संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र का ये द्वितीय भाग है। हरी सो जगवस्तु नहीं, प्रेम पंत सो पन, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। श्री राधे श्याम। भगवान के सभी भक्तों, संतों, वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। राधेश। तो भगवान रामानंदाचार्य जी सबके बीच से अदृश्य हो गए थे। माता पिता के प्राण निकल गए हैं उनके वियोग में, विरह में। वो भगवत धाम प्राप्ति हुई। सब लोग मिलकर सोच रहे हैं कि अब भगवान कैसे प्रकट हों, कैसे प्रकट हों। तो राघवानंद जी, ये वशिष्ठ जी के अवतार हैं और इनके कुलगुरु हैं, यहाँ पे भी इनके कुलगुरु ही हैं। राघवानंद जी आए, सब ने उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए। राघवानंद जी ने राम महायज्ञ करवाया, राम नाम का महायज्ञ, और उसमें 1000 ब्राह्मण थे और 6 करोड़ आहुतियाँ राम नाम की उसमें दिलवाई गई कि भगवान प्रकट हों। और भगवान वहीं यज्ञ वेदी कुंड से भगवान का जो प्राकट्य, सबके सम्मुख भगवान का प्राकट्य हुआ। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम प्रकट हुए, तो भगवान वहीं प्रकट हुए सबके सामने, जैसे गोपियों के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। सब ने भगवान की जय जयकार करी और सब आनंदित हुए भगवान के दर्शन करके। भगवान ने शंख बजाया, उनकी शंख ध्वनि ऐसी होती थी वह आनंद भर देती थी सबके बीच में। अब भगवान यहाँ से सबको आनंदित करने के बाद भगवान ने अपने गुरु राघवानंदाचार्य जी से राम नाम की दीक्षा ली और ये चले गए भजन करने। और फिर ये राम नाम का भजन करते थे। काशी में रहते थे, काशी में रह के उन्होंने भजन किया, गंगा तट पर भजन किया। तो भजन करते हुए वहीं काशी में ही बहुत सारे लोगों की इन्होंने दुखों की निवृत्ति करी। और जब भी मतलब जो भगवत विमुख लोग होते थे उनके सम्मुख भी यदि शंख ध्वनि कभी हो जाती थी तो वो प्रेम में और भक्ति में पागल होकर इनका शिष्यत्व ग्रहण करते थे, गुरु बना लेते थे इन्हें। तो एक बार क्या हुआ कि सुधोली के एक राजा थे, उन्होंने इनका प्रताप पता चला रामानंदाचार्य जी का। उसके पुत्र जो था राजकुमार, उसको क्षय रोग था, क्षय रोग टीबी जिसे कहते हैं। उस समय टीबी का कोई इलाज था नहीं, तो पुत्र मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। वो उठा के अपने पुत्र को इनके पास लेके आए, जी कुछ दया कीजिए हम पे, इकलौता राजकुमार है, ये मर गया हमारा पूरा मतलब वंश खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है, इनको गंगा जी में डाल दो, 7 दिन के बाद निकाल लेना। अब कोई अपने पुत्र को ऐसे गंगा जी में फेंक दे, विश्वास तो था कि रामानंदाचार्य जी बोल रहे हैं तो ठीक हो जाएगा, पर फिर भी माँ बाप अपने पुत्र को नहीं फेंक सके कि गंगा जी में फेंक दिया तो डूब के मर जाएगा। पुत्र को रामानंदाचार्य जी की वाणी पे विश्वास था, उसे तो ये था कि मैं मरना तो है ही। तो वो आंख बिछा करके इनकी कूद गया उसमें। वो जब कूदते हुए सबने देखा, कोशिश भी करी उसे निकाल लेंगे, लेकिन वो अंदर चला गया गंगा जी में। तो इन्होंने माता पिता को तो लगा कि भाई हमारा पुत्र चल बसा, अब ये वापस नहीं आएगा। लेकिन वो 7 दिन के बाद वापस आया, निकला, और उसकी जो देह कांति थी वो देख करके सब चकित रह गए। ऐसी देह लेकर के वो आया। जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ थे, उसने बताया कि वो देवलोक में था, देवलोक में हो रहा, और गंगा जी सम्मुख थी उसके, गंगा मैया। तो उसने वहाँ की कथा बताई कि मैं 7 दिन तक देवलोक में रहा और माँ गंगा के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं मैंने। सब चकित थे क्योंकि रामानंदाचार्य जी ने कहा था, तो ऐसे चमत्कार हुए। एक दिन क्या हुआ कि शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन मंदिर में बड़ी भीड़ थी, विश्वनाथ जी के मंदिर में काशी में। तो भगवान रामानंदाचार्य जी दर्शन करना चाहते थे भगवान शिव के, तो ये गए अर्धरात्रि में। जब अर्धरात्रि में गए कि भीड़ भाड़ ना हुआ, ऐसे ऐसे टाइम पे भगवान शिव के दर्शन करेंगे, दर्शन करने पहुंचे, लेकिन तब कपाट बंद हो चुके थे। ये द्वार पे गए, देखा कि यहाँ तो सब बंद है, सब बंद पड़ा हुआ है, तो वापस लौट आए कि बंद है तो चलो। भगवान शिव से माँ पार्वती ने कहा, भगवान रामानंदाचार्य आए हुए हैं प्रभु। तो भगवान ने, शिव जी ने खुद उठ करके दरवाजा अपने जो कपाट खोले हैं और भगवान को बुलाया और गले मिले। भगवान शिव और भगवान रामानंदाचार्य जी सहर्ष गले मिले और अपने दिव्य आसन पे ही रामानंदाचार्य को भगवान शिव ने अपने पास बिठाया। भगवान राम की स्तुति करी। इधर भगवान इनकी स्तुति कर रहे हैं, वो ये कहने लगे, भगवान शिव कह रहे हैं उनसे, आप मेरे आराध्य हैं प्रभु, ऐसा ना करें, आप तो मेरे आराध्य हैं, मेरे हृदय में वास करते हैं आप, आपने ये रूप लिया है जगत कल्याण के लिए, आप धर्म प्रचार के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, ये शरीर इसलिए धारण किया, लेकिन है तो मेरे स्वामी आप। तो भगवान शिव की और भगवान रामानंदाचार्य जी की बड़ी दिव्य दिव्य वार्ताएं यहाँ पे हुई हैं। फिर भगवान शिव उनको जब चलने के लिए बोल रहे हैं, तो और भगवान शिव ने यह भी कहा कि प्रभु आपसे तो और तो क्या, कलयुग स्वयं आएगा आपसे दीक्षा लेने के लिए, आगे का जैसे मैं देख रहा हूँ कि वो आएगा और आपका जो प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा, आप लोगों को प्रेम बांटते चलोगे, तो आनंद इससे बड़ा लाभ होगा भगवान, आपके इस अवतार से तो लोगों को बड़ा ही लाभ होने वाला है, ऐसी वार्ताएं हुई। जब भगवान चलने को हुए तो भगवान श्री राम प्रणाम कर रहे हैं शिव जी को, शिव जी उनके हाथ पकड़ लेते हैं भगवान के कि प्रभु अगर कोई एक बार राम बोलता है ना तो मैं उसको 3 बार प्रणाम करता हूँ, आप तो साक्षात राम है। हंसने लगे भगवान शिव, फिर आप बताओ मैं आपको कितनी बार प्रणाम करूं। तो दोनों हंसने लगे, दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया, आलिंगन करे, आलिंगन के बाद भगवान श्री राम जी चले आए रामानंदाचार्य जी। राम और शिव में कोई भेद नहीं है, तत्वतः तत्व एक है, दोनों एक ही तत्व हैं, राम और शिव, राम और कृष्ण कह लो, राम और शिव कह लो, एक ही तत्व हैं, कोई अलग तत्व नहीं है। यहाँ वेश भगवान शिव का है, यहाँ भगवान राम का है, इनमें भेद नहीं मानना चाहिए। और जो इनमें भेद मानता है कि राम बड़े कि वो बहुत भगवत अपराध करता है कि शिव बड़े हैं कि राम बड़े हैं, नहीं, वो एक ही हैं, जब बड़े छोटे का तो सवाल ही नहीं हो सकता। एक ही, अगर हम गंगा जल ले लें, गंगा जल को एक तरफ घड़े में भर लें और एक तरफ किसी और पात्र में भर लें, और तो हम कह दें कि इसमें घड़े वाले में ज़्यादा है या इसमें ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है, तो गंगा जल दोनों भगवान हैं, वो एक ही हैं, और वो एक है ही नहीं, गंगा जल ही है जब, तो तत्वतः राम और शिव एक ही हैं, भेद बिल्कुल नहीं है कि छोटा कौन बड़ा कौन। शिव जी इनके उपास्य हैं और राम जी के, शिव जी के और शिव जी राम जी के उपास्य हैं, तो उनमें कोई भेद नहीं, आपस में ही एक दूसरे की उपासना करते हैं। फिर हम आते हैं चरित्र पे, तो भगवान रामानंदाचार्य जी आए अपने उसमें। तो इसके बाद की जो कुछ दिन बाद ही एक दिन ये देखते हैं कि कलयुग प्रकट हुआ और भगवान के सामने, रामानंदाचार्य जी के सामने आया, वो आया तो उसका तेज, भगवान के तेज के सामने उसको सहन नहीं हुआ, तो वो छिप गया। छिपा कहाँ, कलयुग को जगह कहाँ दी थी परीक्षित ने, 5 जगह दी थी, 5 ही जगह कलयुग को दी थी। कौन कौन सी थी वो 5ों जगह? एक थी परिस्त्री, परधन, जुआ, मदिरा, मांस, ये उनको जगह मिली थी। और एक जब उसने मांगी थी तो उसको स्वर्ण दिया था, परधन में ही आ जाता है स्वर्ण भी, कि स्वर्ण में तुम जा सकते हो, तो ये स्वर्ण में छिपाया, अभी स्वर्ण पात्र रखा हुआ है वहाँ, पंचपात्र स्वर्ण का, तो उसमें ये छिप गया है कलयुग। रामानंदाचार्य जी जैसे जल लेने के लिए उठा तो उन्होंने देख लिया, उसको फटकारा, कौन बाहर निकल। वो कहने लगा भगवान हिम्मत नहीं है आपके समक्ष आने की, तो मेरे पास हिम्मत नहीं है, किस लिए आए हो? बोला महाराज आप, मैं भी उद्धार करना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ। ये मुस्कुराए कि तुम हमसे पहले तो वाल्मीकि जी आ चुके हैं, व्यास जी आए हैं, उनको क्यों नहीं गुरु बनाया? बोले कि महाराज आप दीन वत्सल हैं, दीनों का उद्धार करने वाले आप हैं, आपने निषाद जी का उद्धार किया, शबरी का उद्धार किया, आपने कितने वानरों का उद्धार किया, यहाँ तक कि आपने राक्षसों का उद्धार किया, तो प्रभु मैं तो नीच और कुटिल हूँ, मेरा उद्धार और कोई नहीं कर सकता सिवाय आपके, आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। भगवान प्रसन्न हुए और इनको गुरु मंत्र दिया, राम नाम का मंत्र इनको सुना दिया, और इनको आदेश दिया कि किसी भी साधु के पास, किसी संत के पास नहीं जाओगे, तुम उनका बुरा नहीं करोगे, आज से वो तुम्हारे गुरु भाई हुए। ये बोले महाराज उनकी तो सेवा करूंगा मैं, कलयुग ने कहा जो साधु संत होंगे उनकी सेवा करूंगा, पर जो साधु संत के वेश में आडंबरी छदमी होगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इन्होंने कहा जय हो, ऐसा ही होगा। तो अभी भी कलयुग जो भी साधु वेश में आडंबर करता है, छदम करता है, उसको कलयुग बिल्कुल बख्शता नहीं है और डबल वार करता है उस पर। तो ये इसके बाद ये हुआ कि काशी जी में सब लोगों को रामानंदाचार्य जी के बारे में पता था कि दीन वत्सल हैं, दीनों के दुखड़े निवारण करने वाले यही हैं। एक बार काशी जी में एकादशी के दिन एक बहुत बड़ी सभा हुई, उस सभा में एक सबने एक दुख भगवान रामानंदाचार्य जी के सामने रखा कि महाराज यवनों का आतंक इतना बढ़ गया है कि इन्होंने स्त्रियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, छोटी छोटी कन्याओं को उठा ले जाते हैं, और जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं उनको मार रहे हैं, जो बिना मतलब के कर हैं ऐसे कर लगा दिए गए हैं, जो धर्म स्थल हैं उनको तोड़ रहे हैं, जहाँ पे धर्म स्थल बनाने की होती है बनने नहीं दिए जाते हैं, कथा कीर्तन होती है बंद करवा देते हैं, उनको जितने भी धर्म के कार्य हो रहे हैं उनमें सारे विघ्न पैदा कर रहे हैं, सामने इनके रखा क्या किया जाए। इन्हें लगा कि चारों तरफ हों इनका बड़ा बवाल मचा हुआ है, तो इन्होंने अपनी उठाया शंख और शंख ध्वनि की। शंख ध्वनि करते ही क्या हुआ कि जितने भी यवन थे उन सब के जब भी वो नमाज अदा करते थे, अपनी नमाज के लिए जाते थे, तो उनके गले रुंध गए, लकवा मार गया, वो आवाज़ ही नहीं निकलने लगी उनकी, उसी टाइम पे उनके वो हो जाते थे, तो सबकी नमाजें बंद हो गई, नमाज अदा करना सबकी बंद, टोटल पांच वक्त की होती है उनकी, तो त्राही माम मच गया सब यवनों में। ये दूर दूर तक खबर पहुंच गई है कि किसी की नमाज नहीं अदा हो रही है, किसी की पढ़ी नहीं जा रही है नमाज, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसके लिए उनमें खलबली मची, पता करो क्यों हुआ है। तो उनके जो वो थे पीर और जो उनके संत होते हैं, फकीर होते हैं, उन पे उन्होंने अरदास लगाई लोगों ने, अपने जो जिनके वो बनी हुई हैं मजारे बनी हुई है वहाँ पे अरदास लगाई, भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मनी मन वो कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं उनका चल रहा था। तो दो उनके ऐसे फकीर थे, एक मीर तकी एक इब्न नूर, इन्होंने बताया कि कोई संत फकीर हैं इनके बहुत बड़े हिंदुओं के, रामानंदाचार्य जी, ये उनकी कोई मंत्र की क्रिया है जो जिससे बंद हो गए हैं, और हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तब हमारा ये दुखड़ा दूर होगा। और सब इकट्ठे होकर के जितने भी फकीर थे बहुत सारे मुसलमानों को लेके वो रामानंदाचार्य जी की शरण में आए। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनते हैं। श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।